येषां तुवन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ति माम दृढव्रताः। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का, क्योंकि इसमें बताया गया है कि उस व्यक्ति की योग्यता क्या है जो भगवान के भजन में स्थिर रहता है। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो आप देखिए कि इस जगत में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे संकल्प, यानी कि ये इच्छा कि मैं इस कार्य को करूँगा, ये मुख्य कारण होती है। अगर मैं सोच लूँ कि मैं इस कार्य को करूँगा ही नहीं, तो चाहे वो आसान हो चाहे वो मुश्किल हो, मैं नहीं करूँगा। लोग एवरेस्ट पे भी चढ़ जाते हैं क्योंकि संकल्प होता है। तो कहने का उद्देश्य ये है, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि लोगों के जीवन में पुण्य कर्म होना चाहिए इस जन्म का और पिछले जन्म का, तब उनको भगवान की सेवा करने का संकल्प उठता है कि भाई नहीं, मैं नाम जप करूँगा, मैं भगवद गीता पढ़ूंगा। अन्यथा लोगों को इस प्रकार की श्रद्धा होती ही नहीं है। सुनने के बावजूद भी नाम की महिमा शास्त्रों से व्यक्ति करता नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति पुण्यात्मक जीवन जिए, तब भगवान की भक्ति में मन लगता है, भक्ति में रस आता है, और जब रस आता है तो व्यक्ति का संकल्प दृढ़ होता जाता है। और द्वंद का अर्थ क्या होता है? द्वंद का अर्थ होता है कि जीवन में सुख दुख हानि लाभ सब कुछ चलता रहता है। हो सकता हो भगवान की भक्ति करने में परिवार वाले भी अड़चन अपना डाले कि तुम क्यों भक्ति कर रहे हो, ऐसा इत्यादि जो भी है। लेकिन व्यक्ति अगर फिर भी दृढ़ता से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, इसलिए तो हमें इससे निष्कर्ष निकालना चाहिए कि निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा है, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। तात्पर्य इस संबंध में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं कि ये जो संकल्प है ये व्यक्ति के टूट जाता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा भोग करता है। तो आप देख सकते हैं भोग करना ये पाप का ही लक्षण है। तो बहुत अधिक भोग करना और पाप कर्म प्रवृत्त होने से व्यक्ति को भक्ति का उत्साह कम हो जाता है। तो उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने इंद्रियों को भी संयमित करे। तात्पर्य इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यानी दिव्य पद को प्राप्त करने का अधिकार क्या है? दृढ़ता। ये नहीं है कि आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे, ये विश्वास का लक्षण है। भक्ति हम कुछ भी करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होती है, लेकिन श्रद्धा के अनुसार हमें उसका रिजल्ट मिलता है। और श्रद्धा का लक्षण है दृढ़ता। अगर हम दृढ़ता से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। जैसा कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अप्रिशिएट करते हैं व्यक्ति सुख दुख हानि लाभ उतार चढ़ाव जो भी हो रहा है उसके बावजूद भी कृष्ण की भक्ति करता रहे। जो पापी नास्तिक मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। इच्छा मतलब मुझे अच्छा लगता है मैं करूंगा, घृणा मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता मैं इसे नहीं करूंगा, और इसी चीज में फंसा रहने के कारण व्यक्ति भक्ति के संकल्प से च्युत हो जाता है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। इंटरेस्टिंग है कि भगवान की रागमय भक्ति जिसमें भगवान से बहुत आकर्षण होता है, वो तभी हो सकती है जब हम लोग भक्ति के विधि विधानों का पालन करें। तो जिसकी आदत है इस प्रकार से विधि विधानों का पालन करने की, वही भक्ति में प्रगति कर सकता है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। तो यानी कि ध्यान तभी लगेगा जब भगवान में आसक्ति हो, और तभी इस प्रकार की आसक्ति होती है जब व्यक्ति विधि विधानों का पालन करता है दृढ़ता से। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है, यानी और कोई विधि नहीं है। मनमाने तरीके से आप आध्यात्मिक पद पर आसीन नहीं हो सकते। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि शुद्ध भक्तों के संग से अपने आप ही पुण्य का निर्माण हो जाता है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थ भद्राणी विधुनोति सुरसताम। भक्तों के संग में आकर जब हमारी कथा सुनते हैं या भक्तों के मुख से हमारी कथा सुनते हैं तो अपने आप ही हमारे पुण्य का निर्माण होने लगता है और भगवान के चरणों में श्रद्धा हमारी दृढ़ होने लगती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत् सेवाम द्वारा माहुर विमुक्ते। सेवा का अर्थ होता है उनको प्रसन्न करना चाहिए। केवल भक्त प्रसाद पाके ही प्रसन्न नहीं होते हैं अपितु भक्त जो चाहते हैं, स्पेशली भगवान के भक्त जो है वो हरि कथा करना चाहते हैं तो उनके मुख से हरि कथा सुनना और जो उनके शरीर को भी आवश्यक हो वो भी देना, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुख्य बात है उनके संग में बैठ जा करके उनका सेवन करना, उनसे हरि कथा सुनना। इसके द्वारा हम भक्तों से आसक्त होते हैं, भक्तों की सेवा करने के योग्य बन पाते हैं और हमारी मुक्ति का द्वार वहीं से खुल जाता है और हम सबके लिए खुल गया है। प्रभुपाद का संग हमको प्राप्त है इन पुस्तकों के माध्यम से और उनके भक्तों का संग हमको प्राप्त है अगर हम इसका लाभ उठाते हैं श्रवण कीर्तन के माध्यम से और अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं भक्ति के विधि विधानों का पालन करके, तो निश्चित रूप से हमारी मुक्ति का द्वार खुल गया है। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। थोड़ा इस पे मैं बोलना चाहता हूँ कि संग हम कैसे करते हैं। संग का अर्थ है प्रीति करना और प्रीति 6 प्रकार से होती है। हम खाने के लिए कुछ दें और खाने के लिए लें, हम कुछ गिफ्ट दें और गिफ्ट लें स्वीकार करें, हम अपने हृदय की बात कहें और हृदय की बात सुने दूसरे व्यक्ति से। तो इस प्रकार से ये प्रीति का लक्षण होता है। तो अगर भौतिकतावादी लोगों से हम ये 6 डीलिंग्स कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उनमें आ सकते होंगे। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति भौतिकतावादी लोगों के संग रहेगा, उनसे इंटरेक्ट कर रहा है तो वो उनका संग ही कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हमें अपने हृदय की बातों को नहीं बताना चाहिए। समाज में रहते हुए फॉर्मल रूप से इंटरेक्शन करने से कोई संग नहीं होता है, लेकिन हृदय नहीं जुड़ना चाहिए और आसक्त नहीं होना चाहिए कि जैसे वो रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वैसे हमें भी जीना खाना पीना चाहिए, वो खतरनाक है। हमको यही चीज भक्तों के प्रति करना चाहिए। जिस प्रकार से भक्त भजन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा ही हमको भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी इस प्रकार के बने, तो फिर हमारा मुक्ति का द्वार खुल गया। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। यानी कि भगवान के जो भक्त हैं वो अपना संग अन्य जीवात्माओं को देने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनको याद रहता है कि उनका भी उद्धार उसी प्रकार से हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं नारद मुनि एक छोटे बच्चे थे पिछले कल्प में और उनको याद है किस प्रकार से भक्तों का संग प्राप्त करके वो नारद मुनि बन गए। इसीलिए भगवान कृष्ण से उन्हें प्रार्थना करी, बृहद भागवत अमृत में आता है कि भगवान मैं आपसे केवल एक वरदान चाहता हूँ, कि एक्चुअली 2 वरदान मांगते हैं। एक कि मैं जो भी आपकी भगवान आपकी बाल लीलाओं को सुनेगा उसको आपके चरणों में शुद्ध प्रेम प्राप्त हो, और दूसरा ये कि मैं शाश्वत समय के लिए मैं जीवात्माओं पे को भक्ति में लगाने का कार्य में लगा रहूँ, भक्ति के प्रचार के कार्य में लगा रहूँ। तो अभी देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि मेरा उद्धार एक भक्तों के कृपा से हुआ था इसलिए मेरा भी कर्तव्य होता है कि अन्य लोगों को जितना मेरी शक्ति है भगवान की भक्ति में लाने का प्रयास करूं। ये एक भक्त का भाव होता है, सच्चे भक्त का भाव होता है। मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। हाँ ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर व्यक्ति प्रयास करेगा कि मैं भगवान बन जाऊं तो ये नहीं समझ रहे कि ये भगवान बनने की प्रवृत्ति के कारण ही मैं इस जगत में हूं। जैसे मान लीजिए किसी को खांसी हो, जुकाम है, तो अब अगर व्यक्ति दही खाए, चावल खाए तो और बीमार पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब जिस ठंडी चीजों के खाने की वजह से वो बीमार पड़ा है अगर उसको ही वो सोचे कि यही मेरा सोल्यूशन है तो कैसे सोल्यूशन होगा फिर। तो इस जगत में व्यक्ति कृष्ण को भूल करके, कृष्ण से अपने संबंध को भूलने के कारण इस जगत में पड़ा हुआ है और हम सभी लोग भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं इसी कारण इस जगत में हम फंसे हुए हैं। और यही धारणा लेकर के अगर कोई व्यक्ति साधना करे कि मैं भगवान बन जाऊंगा तो फिर कैसे मुक्ति होगी। दूसरा धारण, कोई मान लीजिए मर्डर करके जेल में आया है, अब वो सोचे कि मैं और दो चार लोगों का मर्डर करूं जेल में और मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो ये मूर्खता होगी। तो मुख्य हमारी इच्छा है कृष्ण के संग समकक्ष रूप से भोग करने की, अपने को ईश्वर बनाने की। तो ये त्यागने से हम भगवान के चरणों की प्राप्ति करेंगे, न कि इसको और बढ़ाने से। तो ये मायावादी लोग समझ नहीं पाते। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। बहुत इंटरेस्टिंग है, स्वाभाविक स्थिति बहुत ही डीप स्टेटमेंट है कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये मेरी स्वाभाविक स्थिति है। वस्तुतः इसके लिए कुछ साधना की जरूरत भी नहीं है। व्यक्ति स्वीकार कर ले कि मैं कृष्ण का दास हूं और मैं कृष्ण की सेवा में लग जाऊं, तो वहीं से वो मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं और फिर कोट करते हैं, इहा यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, अगर वो स्वीकार कर ले कि वो कृष्ण का दास है और कृष्ण की सेवा में लग जाए मन से, वचन से और कर्मों से, या ना भी लग पाए केवल इच्छा कर रहा है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। तो लेकिन अगर यही भावना क्लियर नहीं है कि मैं भगवान हूँ, सॉरी क्षमा कीजिएगा, मैं भगवान का दास हूँ, और ये भावना बड़ी जब प्रबल है कि मैं भगवान हूँ, तो कृष्ण की सेवा करने की इच्छा क्यों होगी? तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभुपाद की कृपा से और भगवान की कृपा से हमें ये बात मालूम चल रही है। इसको धारण करना चाहिए और अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए और दृढ़ता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान निश्चित रूप से हमें स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा।